समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और इस समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो नेहा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट नेहा गोस्वामी। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
आज डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह मिशन अब एक जन आंदोलन बन गया है और यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की कुंजी है।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says India-US relations remain strong, driven by cooperation in tech, trade, education and security.
अमेरिका ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोगी के रूप में भारत को महत्वपूर्ण देश बताया। कहा दोनों देशों के बीच एक प्रमुख व्यापार समझौते की घोषणा होने वाली है।
थाईलैंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सस्पेंड्स प्राइम मिनिस्टर पेटोंगटान शिनावात्रा ओवर अ लीक्ड फोन कॉल।
हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति, मौसम विभाग ने तेज बारिश की चेतावनी दी।
एंड इन वीमेंस क्रिकेट, इंडिया टू टेक ऑन होस्ट इंग्लैंड इन द सेकेंड T20 इंटरनेशनल एट ब्रिस्टल टुनाइट। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Digital India 10 Years and National Doctors Day.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया एक जन आंदोलन बन गया है और यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को दुनिया के लिए एक विश्वसनीय नवाचार भागीदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने पर एक ब्लॉग में उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है।
डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांव-गांव तक फैली डिजिटल क्रांति ने लोगों का जीवन आसान बना दिया है। मौसम का हाल या मंडी का भाव, शिक्षा या स्वास्थ्य, कृषि या बैंकिंग, सब कुछ अब एक क्लिक पर।
कोई भी अगर हमारा अंश या सब्सिडी कहीं से आनी होती है तो सीधे हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाती है। हमारा बैंक खाता लग गया, हमारी पासबुक लगी, सीधे हमारे बैंक खाते में आ गया। तो हमको बाबू के जो चक्कर लगाने पड़ते थे, हमको उससे निजात मिल गया है।
इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भाग दौड़ नहीं करनी पड़े, सीधे उनके खाते में पैसा आ गया और वो अपना किताब कापी अन्य चीजों के लिए सीधे इस्तेमाल कर ले।
पहले जो होता था कि बस की टिकट बुक करनी हो, प्लेन की करनी हो या ट्रेन की करनी हो तो हमें रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाना पड़ता था, पर अभी क्या है कि मोबाइल में एक ही सेकंड में हम सब कर सकते हो।
ये बदलाव आया है देश के 99.6% जिलों में उपलब्ध 5G और 5,75,000 से अधिक जनसेवा केंद्रों से।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 42,00,000 किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो पृथ्वी और चंद्रमा की बीच की दूरी से 11 गुना अधिक है, इससे सुदूरवर्ती गांव भी जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 5G का विस्तार दुनिया में सबसे तेजी से हुआ है, जिसमें केवल 2 वर्षों में 4,81,20,000 स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट न केवल शहरी केंद्रों तक पहुंच गया है बल्कि गलवान, सियाचिन और लद्दाख सहित अग्रिम सैन्य चौकियों तक भी पहुंच गया है।
Yes, and Prime Minister Narendra Modi has said that Digital India has become a people's movement and is central to building an Atmanirbhar Bharat and making India a trusted innovation partner to the world. In a blog marking 10 years of the Digital India program, he said India is moving from digital governance to global digital leadership and from India first to India for the world. Mr. Modi wrote that while decades were once spent doubting the ability of Indians to use technology, this mindset has changed.
उन्होंने कहा कि यह मानने के बजाय कि प्रौद्योगिकी असमानता को और बढ़ाएगी, अब इसका उपयोग संपन्न और वंचितों के बीच की खाई को पाटने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब इरादा सही हो तो नवाचार लोगों को सशक्त बनाता है और इससे हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव देखने को मिलते हैं.
Yes, and this belief, he said, laid the foundation of Digital India mission to democratize access, build inclusive digital infrastructure and create opportunities for all.
प्रधानमंत्री ने कहा कि 1.2 बिलियन डॉलर के भारत एआई मिशन के साथ भारत अब सबसे किफायती कंप्यूटर गंतव्य बन गया है. उन्होंने कहा कि भारत मानवता प्रथम एआई का समर्थन कर रहा है और एआई पर नई दिल्ली घोषणा जिम्मेदारी के साथ नवाचार को बढ़ावा देती है. श्री मोदी ने निष्कर्ष निकाला कि अगला दशक और भी अधिक परिवर्तनकारी होगा.
Yes, and a correspondent reports that the Digital India initiative has made significant strides bringing internet access to remote areas and making government services available online.
The Digital India initiative has truly bridged the digital divide by bringing internet access to remote corners of the country and making government services available online. The people can access healthcare, education, banking and other services with just a few clicks. Mobile connectivity has expanded to almost every village of the country due to the Digital India campaign. 44 lakh crore rupees have been transferred through direct benefits transfer, which saved over 3 lakh 48,000 crore rupees of the government. Digital services have made governance faster and more transparent. The Unified Payment Interface, UPI, allows users to instantly transfer money between bank accounts using a smartphone. Today, nearly 46 crore people and over 6 crore merchants are using UPI. Akshit Vaidyan, Delhi.
Union Home Minister Amit Shah has said that Digital India initiative has democratized technology, transforming India into a global digital powerhouse. On 10 years of Digital India, Mr. Shah said, from healthcare and education to business and commerce, it has made every sector more inclusive, innovative and future-ready by empowering citizens and driving a sustainable digital economy.
Rail Mantri Ashwini Vaishnav ne aaj Rail One app ka shubharam kiya, jo sabhi rail yatri sevao ke liye one-stop samadhan hai. नई दिल्ली में सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि रेल अधिकारियों का पूरा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा पर होना चाहिए.
हमारा सबसे पहला कमिटमेंट रहना चाहिए हमारे गरीब परिवारों के प्रति, सेफ कंफर्टेबल ट्रैवल, अफोर्डेबल ट्रैवल कर सकें, उनका ध्यान रखना रेल परिवार की तरफ से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेदारी बनती है. आज रेल वन ऐप का आरंभ होना उसी भावना के तहत है. कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहां लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े. रिजर्व टिकट आज भी IRCTC पहले की तरह करता रहेगा. IRCTC और क्रिस दोनों साथी हैं. क्रिस अनरिजर्व टिकट करेगा, जो कि आज तक खिड़की से होता था.
श्री वैष्णव ने बताया कि रेल वन ऐप के माध्यम से यात्री अनारक्षित टिकट भी बुक कर सकते हैं. यह ऐप रेल संबंधित पूछताछ, PNR, यात्रा योजना, रेल मदद सेवाएं और ट्रेन में भोजन जैसी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है. यह ऐप न केवल सभी सेवाओं को एक जगह पर उपलब्ध कराता है, बल्कि कई रेल सेवाओं के बीच एकीकरण भी करता है, जिससे उपयोगकर्ता को भारतीय रेलवे की सेवाओं को पूरा पैकेज मिलता है. रेल वन ऐप को एंड्रॉयड प्ले स्टोर और iOS App Store से डाउनलोड किया जा सकता है.
Yes, and now on to our second topic in a Dateline section, that is National Doctors Day. Today, July 1st, India celebrates National Doctors Day. This day is dedicated to honoring the tireless dedication, compassion and relentless efforts of its medical professionals. Doctors Day serves as a tribute to the vital role doctors play in healing, protecting and strengthening communities. It acknowledges their personal sacrifices too.
हर साल 1 जुलाई को मनाए जाने वाला यह दिन महान चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षक और भारत के सबसे सम्मानित चिकित्सा पेशवरों में से एक थे.
Yes, Neha, and the theme for National Doctors Day 2025 is Behind the Mask, Who Heals the Healers? Well, the theme calls for greater awareness and support for those who consistently put patients first, sometimes at the cost of their own health and happiness.
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हमारे स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के अथक समर्पण, कड़ी मेहनत और तत्परता के लिए उन्हें धन्यवाद देने का एक सार्थक अवसर है.
एंड टुडे इंडिया पोस्ट रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प इन ऑनर ऑफ डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एंड अलोंगसाइड नेशनल डॉक्टर्स डे दैट इज टुडे 1st ऑफ जुलाई इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इन इंडिया. And this day marks the founding of the Institute of Chartered Accountants of India, established on this day in 1949.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
Yes, and Tegbir Singh, a 6-year-old kid from Punjab, has set a new world record of a youngest mountaineer to scale Mount Elbrus. It is the highest mountain in Russia and Europe, which is 18,510 feet, 5,642 meters high. This is the 10th most prominent peak in the world as well. Tegbir started the track with his father, Mr. Sukhinder Deep Singh, on the June 20th, and reached the Elbrus peak on June 28th. Speaking to Akashvani's Jalandhar correspondent, Tegbir said that he had made it a point to scale the mountain and he succeeded in doing that.
जम्मू और कश्मीर सरकार इस साल होने वाले वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी क्षेत्रों में आवश्यक प्रबंध करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को दोनों मार्गों दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलमार्ग मार्ग और मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले में बालटाल मार्ग से एक साथ शुरू होगी. यात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू बेस कैंप से श्रीनगर के लिए अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी. हमारे संवाददाता से और अधिक जानकारी.
The Holi Cave is a prominent Hindu shrine known for the ice stalagmite that forms within resembling a Shivalinga. The cave is situated at an altitude of 12,756 feet in the Himalayas in Kashmir region. In the wake of gruesome April 22nd Pahalgam incident, this year radio frequency, identification RFID tracking systems, high-tech cameras and integrated command and control centers have been made operational for smooth conduct of the yatra. The measures taken by the government and the security apparatus has given confidence to the devotees across the country and their registration process has positively picked up of late. Lieutenant Governor Manoj Sinha has appealed the visiting pilgrims to follow security related standard operating procedure and ensure nobody travels outside the designated convoys for safe and hassle-free travel. He said that there will be no helicopter services available to the pilgrims due to several technical reasons. He exuded confidence that successful conduct of yatra will reverse the impact of the April 22nd unfortunate incident.
आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम व्यवस्था ऐसी कर रहे हैं कि सब लोग कन्वॉय के साथ ही आएं ताकि वो सुरक्षित और सहूलियत से पहुंच सकते हैं. प्राइवेट गाड़ी से भी कोई आए तो उसका स्वागत है.
Notably, Shri Manoj Sinha performed the Pratham Puja on 11th of this month at the Holi Cave, marking the ceremonial beginning of the annual Shri Amarnath Ji Yatra. Shri Amarnath Ji Shrine Board has been organizing Pratham Puja at the Holi Cave on the auspicious occasion of Jyeshtha Purnima every year.
Shiva Dho Bhuja Chara Chatura Daja Bhuja Te Sohe Bhole दाजा बुझाते सोहे तीनोरुपानी रागता.
The political leaders cutting across party lines and the government of Jammu and Kashmir are confident that local populace would maintain the age-old tradition of hospitality in welcoming the yatris to make it safe, secure and happy yatra for all the devotees from within and outside Jammu and Kashmir. For Parikrama, Tariq Rathar, Akashwani News, Srinagar.
In a groundbreaking discovery from the mist-laden high-altitude forest of Arunachal Pradesh, a new species of flowering plant, Begonia nishioram, has been identified by forest officials in East Kameng district. We have a report.
The discovery of the new species of flowering plant, Begonia nishioram, in Arunachal Pradesh has earned international recognition after being published in Novon, a journal for botanical nomenclature, a reputed global journal dedicated to plant taxonomy. With its crimson fringed petioles, a unique floral structure, Begonia nishioram stands out not only as a new addition to science but also as a rare botanical gem endemic to the eastern Himalayas, a region already known for its rich ecological diversity. Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu hailed the discovery as a profound moment for Arunachal Pradesh, calling it a reaffirmation of the state's invaluable natural heritage and its global biodiversity significance. He extended special congratulations to the Forest Division, SEPA. This discovery has further strengthened calls for intensified conservation efforts and scientific exploration in Arunachal Pradesh, one of India's richest biodiversity states. For Parikrama, this is Rakesh Tole, Akashwani News, Itanagar.
लद्दाख के गठन के बाद यूनियन टेरिटरी लद्दाख ने हर क्षेत्र में प्रगति की सुबह देखी है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हर क्षेत्र में छात्रों के लिए बेहतर शैक्षणिक संस्थान और अवसरों के रूप में एक नई सुबह देखी गई है। लद्दाख विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पहली बार 110 घंटे के राष्ट्रीय हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
The final round of this prestigious national competition was held in Kolkata on the 30th of June. Competing against 205 teams from across the country, the team from the University of Ladakh, led by Dr. Basharat Ali and comprising students Mr. Tanzin Palden and Mr. Tanzin Yenjur, secured the first prize. Their winning project titled Bio Ladakh brilliantly combined modern technology with traditional ecological knowledge to address the unique biodiversity challenges of Ladakh's fragile high-altitude ecosystem. The innovation was widely appreciated by the environmental experts and officials present at the event. The Honorable Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav, facilitated the team with a cash prize of 1 lakh rupees and medals in recognition of their outstanding contribution to environmental conservation. The historic win not only marks a significant milestone for the University of Ladakh, but also showcases the academic potential and scientific spirit flourishing in the Himalayan region. For Parikrama, this is Anayat Ali from Kargil Union Territory of Ladakh.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
In women's T20 cricket, India will take on England in the second of the five match series in Bristol tonight. The match will start at 11 PM Indian time. The visitors had won the first match by 97 runs in Nottingham, taking a 1-0 lead in the series. Now on to some business news. The benchmark domestic equity indices ended with marginal gains in today's lackluster trading session. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange Sensex advanced 91 points to close at 83,697. The National Stock Exchange Nifty 50 added 25 points to settle at 25,542. Both indices rose 0.1% each.
अब हम करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और याद और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
We remember freedom fighter and social reformer Sumant Mehta, who was born on the 1st of July, 1877, in Surat, Gujarat.
Mehta traveled to China, Japan, Germany, France, England, the US and Canada during 1910-11 and met Indian revolutionaries like Madame Kama, Shyamji Krishna Verma and Virendranath Chattopadhyay. These meetings broadened his perspective and inspired him to join the freedom struggle.
He was influenced by the religious texts and works of Ramakrishna Paramhansa, Swami Vivekananda and Omar Khayyam. Influenced by Gopal Krishna Gokhale, he joined the Servants of India Society.
Mehta participated in the relief work during the flood in Gujarat in 1927. He was in charge of the Sarbhon camp during the 1928 Bardoli Satyagraha. He organized a youth conference in 1929. He presided over two conferences of the Baroda Praja Mandal. He spent 5 years in jails of Sabarmati, Visapur and Nashik. He also worked for the welfare of farmers, labourers and tribal people.
A notable writer, Mehta wrote his autobiography titled Atmakatha, which was posthumously published in 1971. We salute this great Indian.
Bande Utkala Janani.
Bande Utkala Janani. Bande Utkala Janani.
We also remember freedom fighter Alek Patra, who was born on 1st of July 1923. Through non-violent civil disobedience, Patra inspired movements for civil rights and environment protection across different regions of Odisha.
Charu bhasamai, janani, janani, janani.
Patra joined the freedom movement during his school days and along with his friends burnt down the police station of Nimapara in protest against the British Raj. Patra was arrested and put in Puri jail. After his release, Patra moved to Kolkata and continued his nationalistic activities. He was arrested again at the Puri railway station on the way to his home and again put into jail. We salute the great nationalist.
And we also remember Marlon Brando Jr., who passed away on this day in 2004. He was an American actor, widely regarded as one of the greatest cinema actors of the 20th century. Brando received numerous accolades throughout his career, which spanned 6 decades, including 2 Academy Awards, 2 Golden Globe Awards, a Cannes Film Festival Award, 3 British Academy Film Awards, and an Emmy Award. Let's listen in to one of his famous dialogues.
You spend time with your family?
Sure I do.
Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man.
Yes, and Brando is credited with being one of the first actors to bring the Stanislavski system of acting and method acting to mainstream audiences. Brando's performance as Vito Corleone, The Don in The Godfather 1972, Francis Ford Coppola's adaptation of Mario Puzo's 1969 best-selling novel of the same name, was a career turning point, putting him back in the top 10 and winning him his second Best Actor Oscar. Let's listen in to his dialogue from the epic movie The Godfather.
Don Corleone, you once said that the day would come when Tessio and me could form our own family. Till today, I would never think of it. I must ask your permission.
Well, Michael is now head of the family, and if he gives his permission, then do you have my blessing?
After we make the move to Nevada, you can break off from the Corleone family and go on your own. After we make the move to Nevada.
How long will that be?
6 months.
Forgive me, Godfather, but with you gone, me and Pete will come under Barzini's thumb sooner or later.
In 6 months' time, there won't be nothing left to build on.
You have faith in my judgment?
Yes.
Do I have your loyalty?
Yes, always, Godfather.
Then be a friend to Michael.
आज डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की पुण्यतिथि और जन्मदिन है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक और राजनेता थे। उनका जन्म 1982 में पटना में हुआ था। वे 1948 से 1962 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और उन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता माना जाता है। उन्हें 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
Yes, and Bidhan Chandra Roy also played a key role in founding of several institutions and cities like Salt Lake, now a part of Vidhanagar Municipal Corporation, Kalyani, Durgapur, and Ashok Nagar, Kalyangar. And in India, the National Doctors Day is celebrated in his memory every year on 1st of July. And also, Eric Alfred Leslie Satie passed away on this day, 1925, better known as Eric Satie. He was a French composer and pianist. The son of a French father and a British mother, he studied at the Paris Conservatoire, but was an undistinguished student and did not obtain a diploma. In the 1880s, he worked as a pianist in Café Cabaret in Montmartre, Paris, and began composing works mostly for solo piano. Let's listen in to one of his hit compositions.
आज जन्मदिन है अमरकांत की। अमरकांत एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक थे जिन्हें प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। अमरकांत ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में इन्हीं हथियारों से, सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुन्नर पांडे की पतोहू, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, एक धनी व्यक्ति का बयान, दुख सुख का साथ शामिल है। अमरकांत को प्रेमचंद की कहानी लेखन परंपरा का एक महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है। वे अपनी कहानियों में सामाजिक यथार्थ को बहुत ही सहज और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते थे।
Yes, and Sufjan Stevens was born on this day in 1975. He's an American singer, songwriter and multi-instrumentalist. He has released 10 solo studio albums and multiple collaborative albums with other artists. Stevens has received Grammy and Academy Award nominations. He received an Academy Award nomination for the Best Original Song and a Grammy nomination for the Best Song Written for Visual Media for the soundtrack's lead single, Mystery of Love. Let's listen to it.
All to see without my eyes, the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, white noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground.
आज हम याद कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार उस्ताद राशिद खान को, जिनकी आज जयंती है। उस्ताद राशिद खान रामपुर सहसवान घराने से। वैसे तो राशिद खान को हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल गायकी के लिए जाना जाता था, लेकिन ठुमरी, भजन और तराना में भी उनकी अच्छी पकड़ थी।
Yes, and Hari Prasad Chaurasia was born on this day in 1938. He's an Indian music director and classical flautist who plays the Bansuri in the Hindustani classical tradition. Chaurasia was born in Allahabad, the present-day Prayagraj, in the Indian state of Uttar Pradesh. His mother died when he was 6 years old, and he had to learn to music without his father's knowledge, as his father wanted him to become a wrestler. Chaurasia did go to the Akhara and train with his father for some time, although he also started learning music and practicing at his friend's house. And there's a very interesting quote, Neha, by Hari Prasad Chaurasia, which I'd like to quote here. He very famously said, "I was not any good at wrestling. I went there only to please my father. But maybe because of his strength and stamina, I'm able to play the Bansuri even to this day." Let's listen into his hit composition, Raga Des Call of Krishna.
आज पुण्यतिथि है रविशंकर व्यास जी की। रविशंकर व्यास जी को रविशंकर महाराज के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की स्वतंत्रता के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी विचारधारा को अपनाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ हमेशा खड़े रहे और उनके आंदोलनों में उनका साथ दिया। रविशंकर महाराज गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ पहले और करीबी सहयोगियों में से एक माने जाते थे।
Yes, and Diana, Princess of Wales, was born on this day in 1961. She was a member of the British royal family. She was the first wife of Charles III, then Prince of Wales, and mother of Prince William and Harry. Her activism and glamour, which made her an international icon, earned her enduring popularity. And also, Neha, Sudesh Bhosle was born on this day in 1960. He's an Indian playback singer who primarily sings for Marathi and Bollywood films. Bhosle is the producer and judge on K for Kishore, a singing contest on Sony Entertainment Television. And he has sung many famous Bollywood songs for Amitabh Bachchan, including from the film Baghban and others. And he mimicked for Amitabh Bachchan in movies such as Family. Let's listen in to a hit song of his.
Hey, roop tera, sona, sona, soni teri payal. Chhan chana chhan, aise chhan ke, kar de sabko khayal. कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना ये से शावा शावा माहिया से शावा शावा.
Yes, and Ruud van Nistelrooy was born on this day 1976. He's a Dutch professional football manager and former player who was most recently manager of the then Premier League club Leicester City. Widely regarded as one of the best strikers of his generation, van Nistelrooy has been the top scorer in three UEFA Champions League seasons.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार, नमस्कार।